हम पांच शरीरों से काम कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव एक नहीं अपितु अनेक शरीरों से काम करते थे।
सन 1984 में परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना की थी। उस साधना के कुछ विशिष्ट प्रयोजन थे जिनका वर्णन भी उन्होंने उस वर्ष की अखंड ज्योति पत्रिकाओं में किया है। उसके विषय में अखंड ज्योति जुलाई 1984 प्री 2 पर वे लिखते हैं, हमारी सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया का प्रयोजन पांच कोशों पर आधारित सामर्थ्यों को अनेक गुनी कर देना है।
मनुष्य में पांच कोश हैं,
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। मोटे तौर से सभी कोशों के जागृत होने पर एक मनुष्य को पांच गुनी सामर्थ्य संपन्न माना जाता है।
पर दिव्य गणित के हिसाब से 5x5x5x5x5 3125 गुना हो जाता है। चेतना के पांच प्राण भी शरीर की परिधि में बंधे रहने तक पांच विज्ञजनों जितना ही होते हैं, पर सूक्ष्मीकृत होने पर गणित की परिपाटी बदल जाती है और एक सूक्ष्म शरीर की प्रखर सत्ता 3125 गुनी हो जाती है। यह कार्य युग परिवर्तन प्रयोजन में भगवान की सहायता करने के लिए मिला है। इस अवधि में हमें न बूढ़ा होना है न मरना,
अपनी 3125 गुनी शक्ति के अनुसार काम करना है। हमारे मार्गदर्शक की आयु 600 वर्ष से ऊपर है।
उनका सूक्ष्म शरीर ही हमारी रूह में है। हर घड़ी पीछे और सिर पर उनकी छाया विद्यमान है। कोई कारण नहीं कि ठीक इसी प्रकार हम अपनी उपलब्ध सामर्थ्य का सत्पात्रों के लिए सत्प्रयोजनों में लगाने हेतु उपयोग न करते रहें। यह रहस्योद्घाटन भले ही उन्होंने 1984 में किया, किंतु अपने नैष्ठिक परिजनों के सम्मुख वे स्वयं को प्रारंभ से ही प्रकट करते रहे हैं। एक शरीर तो हिमालय में तप करता रहता है।
श्री रामाधार विश्वकर्मा जी बिलासपुर के सक्रिय कार्यकर्ता थे।
वे पूज्य गुरुदेव के प्रारंभिक शिष्यों में से एक रहे हैं।
सन 1953 में वे पूज्य गुरुदेव से जुड़े व सतत संपर्क में बने रहे।
वे बताते हैं कि एक बार वे पूज्यवर के पास मथुरा गए थे। पूज्यवर अपने कक्ष में पत्र लेखन में तल्लीन थे। फिर उन्हें याद आया कि किसी के पास मिलने जाने का निश्चय हुआ है।
उन्होंने आधे पत्र ही लिखे थे, आधे ऐसे ही छोड़ दिए। अपने कक्ष में ताला लगाकर मुझे साथ लेकर निश्चित कार्यक्रम हेतु चल दिए। जब हम लौटकर आए तो उन्होंने स्वयं ही ताला खोला।
मैंने देखा कि पूज्यवर ने जो आधे पत्र छोड़ दिए थे वे भी पूरे हो गए हैं।
मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने तो आधे पत्र लिखे थे, फिर ये पूरे पत्र कैसे लिख गए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा,
एक अकेले शरीर से इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा?
मेरे पांच शरीर हैं ना।
एक शरीर तो हिमालय में तप करता रहता है, अन्य शरीरों से युग निर्माण के बड़े कार्य हो रहे हैं। हमारा जो भी कार्य आपको दिखाई दे रहा है यह केवल 2% ही है।
30% का थोड़ा सा हिस्सा ही साधक स्तर के व्यक्ति जान पाए हैं।
शेष 97% कार्य तो हमने अदृश्य स्तर पर ही किया है, पूरी दुनिया से छिपाकर किया है।
गुरुजी का नाश्ता। एक बार तो मैंने उनके सूक्ष्म शरीर के दर्शन भी किए।
वह पल तो मुझे बुलाए नहीं भूलते। कुछ क्षणों तक तो मैं धर्म संकट में फंस गया था, मुझे लग रहा था कि मेरी जान ही निकल जाएगी। यह शायद सन 1965 या 1966 की घटना है।
परम पूज्य गुरुदेव 24 कुंडीय यज्ञों की श्रृंखला में श्री उमाशंकर चतुर्वेदी के घर रुके हुए थे। जब गुरुदेव बिलासपुर में होते तब मैं पूरे समय उनके आसपास ही रहता, क्योंकि श्री चतुर्वेदी जी को अनेक कार्य देखने होते थे। उस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं श्री चतुर्वेदी जी के घर पहुँच गया। गुरुवर कमरे में जहाँ उन्हें ठहराया गया था जा चुके थे।
मैं सीधे ऊपर उनके कमरे में ही चला गया। थोड़ी देर आपस में हम दोनों की बातचीत हुई।
गुरुदेव के साथ जो सज्जन आए थे उन्हें गुरुजी ने व्यवस्था हेतु यज्ञशाला भेज दिया।
यज्ञ प्रारंभ होने में अभी काफी देर थी।
इसी समय गुरुजी ने जाने मन में क्या सोचा मुझसे कहा, रामाधार,
न मेरे शरीर को छूना, न किसी को पास आने देना, न तुम पास आना, दरवाजा हल्का लगा दो व तुम देखते रहना, कहीं मत जाना, यहाँ से हिलना मत।
मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ।
क्योंकि मैं साधना करता था, थोड़ा बहुत साहित्य भी पढ़ता था,
अतः स्पर्श की बात तो मुझे ठीक लगी, पर नाश्ता करके आ रहा हूँ यह बात कुछ समझ नहीं आई। फिर भी गुरुजी का आदेश है, उसका प्राणपण से पालन करेंगे मानकर जमा रहा। दरवाजा हल्का सा लगा दिया ताकि अंदर भी दिखाई देता रहे। वह ठीक दरवाजे से सटकर बैठ गया तथा अंदर बाहर देखने लगा। मैंने देखा कि गुरुदेव ने चटाई बिछाई, उस पर लेट गए व ध्यानस्थ हो गए। मैं देखता रहा। इतने में क्या देखता हूँ कि गुरुवर के शरीर से एक छाया प्रकाश, नीले रंग के छाया गुरु निकले और आकाश की तरफ धीरे धीरे उड़ चले।
साधना में कहीं भी आ जा सकने की क्षमता के विषय में पढ़ने को तो बहुत मिला था, पर उसे उस दिन में प्रत्यक्ष देख रहा था। सो अधिक अचंभा तो नहीं हुआ, किंतु इसे अपनी आंखों से देख सकने पर स्वयं को धन्य धन्य मान रहा था।
मैं गुरुदेव के विषय में चिंतन करते हुए उनकी आज्ञानुसार वहां बैठा रहा।
समय कब बढ़ रहा था पता ही न चला।
एक घंटा बीत गया। इतने में श्री चतुर्वेदी जी आए। मैंने इशारे से मना किया, वे लौट गए। थोड़ी देर में फिर आए, कहा, विश्वकर्मा जी, मिलने वाले लोग बढ़ रहे हैं। मैंने इशारे से फिर मना किया, वे फिर चले गए। इसी प्रकार जब कई बार हुआ तो अंत में चतुर्वेदी जी ने कहा, भीड़ काफी बढ़ गई है, गुरुदेव को उठाना ही होगा। आप नहीं उठाते तो मैं उठाऊंगा। मैं पसीने पसीने हो गया। हे भगवान,
क्या करूं? गुरुदेव का आदेश है, कैसे नहीं मानूं? पर दो घंटे से भी अधिक समय बीत चुका था।
अब मेरा मन आशंकित होने लगा,
कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। पर भीतर जा नहीं सकता, किसी को बता भी नहीं सकता, गुरुदेव का निर्देश था। मैं भीतर ही भीतर डर रहा था।
फिर भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया व चतुर्वेदी जी को रोका। कहा, कम से कम थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, अन्यथा गुरु आज्ञा की अवहेलना का पाप सहना पड़ेगा। इस तर्क से चतुर्वेदी जी हार मानकर नीचे चले गए, पर मेरा मन बहुत भारी हो रहा था। पब्लिक को कैसे समझाएं? मेरे तो जैसे प्राण ही निकले जा रहे थे। अब मैं मन ही मन कभी भगवान से तो कभी गुरुजी से अनुनय विनय करने लगा, हे प्रभो, अब तो आ जाओ, मेरी लाज रख लो, आदि आदि प्रार्थना से अपने इष्ट को मना रहा था, उन्हें देखता भी जा रहा था।
इतने में पूज्यवर के शरीर में कुछ हलचल हुई, प्रकाश शरीर आया जिसे पुनः मैंने स्पष्ट देखा और गुरुदेव उठकर बैठ गए। मेरी जान में जान आई। मन में कहा, गुरुदेव,
आज तो आपने मेरी कठिन परीक्षा ले ली,
कृपा कर बचा लिया, शायद अब मैं आपकी चौकीदारी न कर सकूं।
लीलाधारी को तो रहस्य एक बार दिखाना था सो दिखा दिया। गुरुदेव उठे तो मैं बस इतना ही कह सका, गुरुदेव आपका नाश्ता मुझे भारी पड़ रहा था। गुरुदेव मुस्कुरा दिए व भीड़ को संभालने यज्ञस्थल की ओर चल दिए।
मैं हर एक के कमरे में रहता हूँ।
श्री गजाधर भारद्वाज जी सन 1957 में पूज्य गुरुदेव से जुड़े व सन 1977 में पूज्य गुरुदेव के कहने पर सपरिवार शांतिकुंज में समर्पित हो गए।
सन 1973 में 24वें प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में मैं सम्मिलित हुआ था।
मैं वशिष्ठ भवन 31 नंबर कमरे में दर्पण साधना कर रहा था।
अचानक मैंने देखा, गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं। मैं पीछे मुड़ा पर गुरुजी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए।
फिर मैंने दर्पण में देखा तो गुरुजी फिर दरवाजे में खड़े दिखाई दिए। फिर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मेरे कमरे का दरवाजा भी बंद था।
जब प्रणाम करने गया तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ।
गुरुजी ने बताया, बेटा,
मैं इन दिनों हर एक के कमरे में रहता हूँ।
अभी अभी यहाँ गुरुजी खड़े थे। द 20th ऑफ मार्च से द 20th ऑफ अप्रैल के 29 दिन में गुरुजी के 58 भाषण हुए और मैंने उपाध्याय जी, चौरसिया जी, महेंद्र जी, कपिल जी, शिव प्रसाद जी आदि ने साथ साथ वानप्रस्थ धारण किया। सन 1977 में मैंने समयदान किया। फिर मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब मैं घर जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा,
मुझे अपने बच्चे पालने हैं। गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, अब तू अपना दिमाग मत लगा, यहाँ आ जा,
बच्चों की देख माइनस भाल मैं करूंगा, बच्चों को यहाँ भर्ती कर दे और तू भी भर्ती हो जा, बस तू चार बातों का ध्यान रखना।
बच्चों को क्या करना है, कोई दबाव नहीं डालना।
नौकरी करेंगे तो उन्नति करा दूंगा, व्यापार करेंगे तो फायदा करा दूंगा, हमारे पास रहेंगे तो बाबा नाती का रिश्ता भी फायदेमंद ही रहेगा। उनके कहने पर मैं शांतिकुंज का ही हो गया। दशहरे में उन्होंने मुझे आंवलखेड़ा भेज दिया। वहां पर एक दिन जब अखंड जप चल रहा था तो जप करते समय मैंने मंदिर में बहुत ऊंचे, लगभग 30-40 फीट ऊंचे गुरुजी को खड़े देखा। मैंने 3-4 बार आंखें मली, पर मुझे वही दृश्य दिखाई दिया।
वहीं पर मेरे साथ जानकी प्रसाद जोशी जी भी जप कर रहे थे।
मैंने पूछा, आपको कुछ अनुभव हुआ? वे बोले, हाँ, अभी अभी मैंने यहाँ गुरुजी को खड़े देखा। वे बहुत ऊंचे, लंबे चौड़े दिखाई दे रहे थे। माताजी का सूर्यार्घ्य। सन 1981-82 की बात है, एक दिन मैंने माताजी को सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए देखा।
मैंने देखा सूर्य की गहरी प्रकाश किरणों का एक समूह उनके चरणों में आ रहा है।
फिर यह प्रकाश किरणें बिखरकर शांतिकुंज के परिसर द्वारा सोखी जा रही हैं। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज मैंने माताजी का विलक्षण स्वरूप देखा, यह क्या है? तो गुरुजी ने कहा, माताजी के इसी दिव्य प्रकाश और शक्ति से शांतिकुंज और युग निर्माण योजना संचालित है। तूने मेरे सूक्ष्म शरीर के दर्शन किए हैं।
ऐसे ही एक दिन जब मैं गुरुजी के कमरे में गया तो गुरुजी जमीन पर बैठकर नक्शे में कुछ देख रहे थे।
गुरुजी के पैरों के तलवे मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।
मैंने देखा कि उनमें चक्र, कमल, शंख आदि चिन्हित हैं। वह इतने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे जैसे कैलेंडर में बने चरणों में दिखाई देते हैं।
मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैंने अभी अभी आपके चरणों में चक्र कमल के दर्शन किए। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा, तूने मेरे सूक्ष्म शरीर के दर्शन किए हैं, पर इस बात की चर्चा बाहर मत करना। गुरुदेव की लीला। श्री कैलाश प्रसाद लांबाजी कोरबा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं।
सन 1959 में वेराट हमीरपुर छोटाओ प्र में पूज्य गुरुदेव से जुड़े।
श्री कैलाश प्रसाद लांबाजी कोरबा में ठेकेदारी का कार्य करते हैं।
किसी भी ठेकेदार के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सरकारी काम का पैसा इसी समय प्राप्त होता है। अतः वे भी अपने वर्ष भर के बिलों के भुगतान की प्राप्ति हेतु प्रयासरत थे।
प्रसंग सन 1977 मार्च के मध्य का है। शांतिकुंज से वंदनीय माताजी का पत्र आया, आपको पूज्यवर ने याद किया है, फौरन चले आए।
श्री लांबाजी कहते हैं कि मैं बड़े पशुपेश में पड़ गया।
यदि हरिद्वार जाता हूँ तो सारे बिल रह जाएंगे, यदि नहीं जाता हूँ तो गुरुवर के आदेश की अवज्ञा होगी।
दो रात में सो नहीं सका, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अंत में तीसरे दिन निर्णय ले ही लिया कि चाहे जो हो, मुझे शांतिकुंज पहुंचना ही है। सभी बिल जैसे तैसे बनाकर पेश करके मैं हरिद्वार पहुंच गया।
उन दिनों शांतिकुंज में गुरुजी से मिलने की कोई बंदिश नहीं थी। परम वंदनीय माताजी से मिलकर मैं ऊपर गुरुदेव से मिलने गया। एक सीढ़ी नीचे से ही देखा कि पूज्यवर अपने साधना कक्ष में तखत पर बैठे हैं। उन्होंने भी मुझे देख लिया व इशारे से मुझे वहीं बुला लिया।
मैंने वहां पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम किया व धीरे धीरे उनके पैरों को सहलाने लगा। किंतु जैसे ही मैंने सिर उठाकर गुरुजी की ओर देखा, मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने देखा, तखत पर पूज्यवर की जगह दादा गुरुजी बैठे हैं।
कुछ सूझा नहीं, क्या करूं।
फिर मैंने गुरुदेव की साधना स्थली की ओर मुंह किया तो वहां गुरुदेव बैठे दिखाई दिए।
फिर पलटकर तखत को देखा तो पता चला गुरुजी तखत पर बैठे हैं।
अब तो मेरी स्थिति अजीबोगरीब हो गई। मैंने फिर साधना स्थली देखी तो वहां दादा गुरुजी थे। तखत पर देखा तो वहां भी दादा गुरुजी नजर आए। फिर साधना स्थली पर गुरुजी दिखे।
इस प्रकार तीन बार अलट पलट कर देखा।
मेरी स्थिति विचित्र हो रही थी।
मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ा। मैंने गुरुदेव के चरणों में अपना सिर रख दिया और मन ही मन कहने लगा, गुरुदेव आपकी लीला न्यारी है,
मैं अकिंचन कुछ भी नहीं समझ सकता। तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ रखा व कहने लगे, तूने कुछ नहीं देखा है, उठ जा, मैं तेरा सब काम ठीक कर दूंगा। उस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आया।
लगा कि गुरुदेव तो ऐसा कहते ही हैं, पर सचमुच उन दिनों में आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था। घर आने पर पता चला मेरा 2.5 लाख का बिल पास हो गया था और मैं आर्थिक तंगी के भंवर से उबर चुका था।
ऐसे कृपालु थे पूज्यवर, ऐसा था उनका विश्राम। श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी पूज्य गुरुदेव के निकटतम शिष्यों में से हैं। सन 1954 में वे पूज्य गुरुदेव से जुड़े व सतत संपर्क में बने रहे। सन 1958 के यज्ञ में भी शामिल हुए। सन 1967 में मथुरा में ही उन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। सन 1973 में गुरुदेव ने उन्हें मथुरा का कार्यभार छोड़कर शांतिकुंज आने के लिए कह दिया और वे सपरिवार शांतिकुंज आ गए। श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी बताते हैं कि विश्राम के क्षणों में भी उनकी चेतना सक्रिय रहती थी।
हमें लगता था कि वे विश्राम कर रहे हैं, परंतु उन क्षणों में वे सूक्ष्म स्तर से अन्य कार्यों में लगे रहते थे।
वे बताते हैं कि मेरे मथुरा छोड़ने जून 1971 तक आप निश्चित रूप से इसी शरीर में रहेंगे। यह आश्वासन पूज्य गुरुदेव ने कुछ स्नेही अनुयायी परिजनों को स्पष्ट शब्दों में दिया था।
विदाई वर्ष के कार्यक्रमों की श्रृंखला में वे लगातार कई कई दिनों तक मथुरा से बाहर रहे।
ऐसी ही एक अवधि में उक्त आश्वासन प्राप्त व्यक्तियों में से दो, जयपुर से श्रीमती चंद्रमुखी देवी रस्तोगी के पतिदेव तथा भोपाल से श्रीरामचरण राय की स्थिति गंभीर होने के पत्र एवं टेलीग्राम मथुरा पहुंच गए। दोनों ही गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थे। 3 दिन बाद पूज्य गुरुदेव दौरे से लौटे। सवेरे के समय मथुरा पहुंचे।
आवश्यक सूचनाओं के साथ उन्हें उक्त जानकारी भी दी गई। थोड़ा सोचकर वे चिंतित स्वर में बोल उठे, कहीं यह दौरा दोनों के लिए घातक न हो। यह शब्द उन्होंने नहाते धोते भोजन करते कई बार कहे।
फिर नियमानुसार भोजन के बाद विश्राम के लिए चले गए।
कहते गए कि तुम लोग अपना काम कर लो और घंटे भर बाद मिलो।
घंटे भर बाद मिलते ही स्पष्ट शब्दों में बोले, अब टेलीग्राम भी भेज दो और पत्र भी लिख दो कि वे निश्चिंत रहें, सब ठीक हो जाएगा। वैसा ही किया गया।
बाद में पता लगा कि उसी दिन दोपहर से दोनों परिजनों की तबीयत में काफी तेजी से सुधार आने लगा और वे स्वस्थ हो गए।
ऐसा ही एक प्रसंग यह भी है। सवेरे 7:30 बजे के बीच पूज्य गुरुदेव अपने कक्ष में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे थे।
नीचे से सूचना मिली कि दिल्ली से ट्रक काल आया है।
एक भाई ने जाकर बात की, लौटकर बताया श्री शिवशंकर गुप्ता तत्कालीन ट्रस्टी और कानूनी सलाहकार कल दोपहर 11 बजे से बेहोश हैं। सवेरे तक होश नहीं आया। पूज्य गुरुदेव ने सुना तो बोले, अच्छा आज की बात यही बंद करते हैं। यह कहकर नियमानुसार वंदनिया माताजी के पास जाकर भोजन लिया और विश्राम के लिए लेट गए। बाद में पता लगा कि श्री शिवशंकर जी को सामान्य बेहोशी नहीं थी, केस ब्रेन हेमरेज का था। परिजनों को इसका एहसास भी नहीं था और एक सामान्य चिकित्सक को दिखाकर ही परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे थे।
दोपहर 11 बजे से शाम हुई, रात बीत गई, तब सवेरे पूज्य गुरुदेव को फोन से सूचना दी और एक भाई वहां से हरिद्वार के लिए रवाना भी हो गए।
फोन से सूचना पाकर पूज्य गुरुदेव जिस अवधि में विश्राम में रहे उसी बीच श्री शिवशंकर जी की बेहोशी टूटी। उन्होंने आंखें खोली, बोले कुछ नहीं, तकलीफ पूछने पर सिर की तरफ इशारा भर किया, सहारा देने पर बैठ गए, चाय के लिए पूछा तो सिर हिलाकर सहमति दे दी, चाय के साथ एक आध टुकड़ा ब्रेड का लेकर लेटे और पुनः उसी बेहोशी में डूब गए। बाद में उनके रोगोपचार का लंबा क्रम चला, उन्हें कई चमत्कारी अनुभव भी हुए, डॉक्टरों को आश्चर्य में डालते हुए वे ठीक हो गए। लेकिन उक्त प्रसंगों से यह तो स्पष्ट होता है कि युग ऋषि का कथित विश्राम कैसा होता था, शरीर को शिथिल छोड़कर वे चेतना स्तर पर कैसे विलक्षण प्रयोग किया करते थे। जब गुरुजी ने इलाहाबाद में पुस्तकें पढ़ी, माधवपुर के श्री बहादुर सिंह बताते हैं कि इलाहाबाद वाले श्री रामलाल जी ने मुझे एक घटना सुनाई। पूज्य गुरुदेव मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, उन्हें इलाहाबाद होते हुए जाना था। स्टेशन के लिए निकलते समय बोले, ट्रेन तो देरी से है, इस बीच यूनिवर्सिटी पुस्तकालय हो लेते हैं। पहले भी गुरुदेव पुस्तकों के लिए 2-3 बार इलाहाबाद पुस्तकालय आ चुके थे। यह सोचकर कि यदि देर हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी से ही सीधे स्टेशन निकल जाएंगे, मैं गुरुदेव का सामान आदि लेकर चलने लगा। गुरुजी बोले, भाई रामलाल
यहीं आकर जाएंगे, अभी आते हैं, मैंने सामान रख दिया।
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पहुंचकर पूज्यवर ऐसे डूब गए कि उन्हें दीन दुनिया का होश ही नहीं रहा। जैसे जैसे ट्रेन के आने का समय समीप आ रहा था, मेरा मन घबरा रहा था।
मैंने 2-3 बार कहा कि गुरुजी सामान भी लेना है और स्टेशन भी पहुंचना है।
थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, समय हो गया होगा,
यह भी तो एक यज्ञ है, इसे बीच में छोड़कर नहीं चल सकते। गुरुदेव पुस्तकें पढ़ने में पूरी तरह मगन थे।
एक पुस्तक में लगभग 10 मिनट लगते। वे पुस्तक पढ़ते व एक तरफ रख देते। वे हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत, पाली, संस्कृत सभी भाषाओं की किताबें देख गए।
इसी बीच मेरे मित्र भटनागर जी गुरुदेव को लेकर स्टेशन जाने के लिए घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गुरुजी और मैं दोनों साथ में ही हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि हम लोग स्टेशन ही गए होंगे,
सो वे सीधे वहीं पहुंच गए।
थोड़ी देर ढूंढा पर यह सोचकर कि कहीं बैठ गए होंगे और वे छूट जाएंगे, भटनागर जी ने टिकट लिया व चलती गाड़ी में बैठ गए।
निर्धारित कार्यक्रम में पूरा भाग लिया, लौटे तो बहुत खुश,
कहने लगे कि न जाने कैसे गुरुदेव ने ट्रेन में हमें ढूंढ लिया और अगले स्टेशन पर ही हमारे पास आकर बैठ गए पर आप नहीं मिले।
उन्होंने बताया, कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा,
हम सीधे स्टेशन से ही आ रहे हैं पर स्टेशन पर उतरने के बाद गुरुदेव दिखे ही नहीं, इसलिए सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वे क्या कह रहे हैं।
गुरुदेव तो लाइब्रेरी से ट्रेन टाइम के निकल जाने के भी आधे घंटे बाद मेरे साथ घर लौटे व चादर ओढ़कर सो गए।
कार्यक्रम में तो वे गए ही नहीं थे।
पिछले 3-4 दिन से गुरुदेव तो हमारे घर पर ही थे। वे रोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाते रहे थे। मैंने पूछा भी कि अब कार्यक्रम का क्या होगा, तब वे हंसकर टाल गए थे और बोले, कार्यक्रम की व्यवस्था भी हो जाएगी।
मैंने भटनागर जी से कहा, गुरुदेव तुम्हें दिखते भी कैसे, वे तो यहीं हैं, कार्यक्रम में तो वे गए ही नहीं थे।
भटनागर जी ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में कहा, क्या कह रहे हैं आप,
मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या?
मैं गुरुजी के साथ था।
मैं तो यह सोच रहा था कि आप कैसे हैं जो गुरुजी को अकेले भेजकर खुद घर पर रह गए।
हम दोनों का वार्तालाप गुरुजी अंदर लेटे लेटे सुन रहे थे।
उन्होंने हमें बुलाया और कहा, क्या लड़कपन करते हो, दोनों की बात सच्ची है।
मैं यहाँ भी था, वहाँ भी था, वहाँ रेल में भी भटनागर जी के साथ में ही था,
यज्ञ में भी मैं ही था। तुम इस बात को गोपनीय ही रखना,
यह मेरा स्वरूप मेरे महाप्रयाण के बाद ही लोगों को पता लगे, यह ध्यान रखना।
समय आने पर ऐसी ढेरों बातें लोगों को पता चलेंगी, तब वे हमारे स्वरूप को पहचान पाएंगे। देखता हूँ कैसे नहीं मानती।
कोरबा के श्री कैलाश प्रसाद लांबा जी कहते हैं कि जांजगीर तहसील छत्तीसगढ़ के कुलीपोटा ग्राम के श्री साध राम साहू अक्सर अपने जीवन की एक अविस्मरणीय घटना सुनाया करते थे।
यह सन 67-68 की घटना है।
एक दिन गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे।
प्रवचन करते करते ही अचानक उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कहने लगे, नहीं मानती, नहीं मानती, देखता हूँ कैसे नहीं मानती, बंद करना पड़ेगा,
आदि आदि। राजस्थान के कोटा जिले के बूंदी तहसील में इंद्रगढ़ देवी का मंदिर है। उन दिनों वहां प्रति वर्ष 1000 से भी अधिक बकरों की बलि दी जाती थी। संभवतः उसी परिप्रेक्ष्य में पूज्यवर ने वह कथन कहे थे, क्योंकि इसके तुरंत बाद वे शिविरार्थियों की ओर मुखातिब होकर बोले, गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे थे जिन्होंने आदर्शों के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। गुरु आज्ञा पर अपना सिर कटाने को तैयार हो गए थे।
क्या आज हमारे शिष्यों में भी ऐसे पंच प्यारे हैं
जो हमारी आज्ञा पर अपना सिर देने को तैयार हैं? शिविरार्थी शिष्य जो लगभग 50-60 की संख्या में थे, उनमें से 27-28 व्यक्तियों ने हाथ उठाया। पुनः गुरुदेव ने पूछा, देखो भाई, ये बताओ कितनों को घर से परमिशन लेनी पड़ेगी?
अभी यहीं से जाने के लिए कौन कौन तैयार है? कहाँ जाना है? क्या करना है?
अभी यह बात स्पष्ट नहीं थी। बात सिर कटाने की थी, सो घर से परमिशन की आवश्यकता नहीं लेने वाले केवल 8 ही हाथ ऊपर उठे, बाकी सभी नीचे हो गए। प्रवचन समाप्त हुआ। उन 8ों को घिया मंडी बुलाया गया। सारी बातें समझाई गईं।
तुम्हें 1 माह के लिए इंद्रगढ़ जाना है,
पशु बलि के विरुद्ध अभियान छेड़ना है, सुबह यज्ञ करना व दिन भर प्रचार प्रसार। माताजी ने सारी बातें सुनी तो रो पड़ी। कहने लगी, बेटा, वहां रेगिस्तान की तपती रेत में तुम्हें नंगे पैरों चलना होगा।
जब वहां रेत की आंधी चलती है तब कुछ सूझता नहीं,
खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। भारी मन लिए उन्होंने हमारे साथ 5 किलो सत्तू व 1 किलो गुड़ बांध दिया। कहा, बेटा, जब भूख लगे खा लेना।
दिए हुए पते पर 8ों बलिदानी गए।
देखा, पूरा खटीकों का गांव था। गांव से बाहर अपना तंबू लगाया।
जैसा समझाया गया था वैसा कार्य सबने दूसरे दिन से प्रारंभ कर दिया।
तीसरे दिन एक साधु मिला, केवल लंगोटी धारी। बातचीत हुई, सबने अपना उद्देश्य बताया।
उसने कहा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो,
आपके गुरु महान हैं, मैं भी आपके साथ चलूं तो 9 हो जाएंगे। सब मान गए। 9 की टोली प्रचार प्रसार हेतु जुट गई।
दूसरे दिन यज्ञ के उपरांत सबके चलने की बारी आई तो उस साधु ने कहा, मुझे घर पर ही रहने दे तो अच्छा हो।
हम सब चले गए।
रात को वापस आए तो देखा आसपास से फूस लाकर तंबू में लगा दिया गया है, गर्म पानी किया रखा है,
भोजन भी तैयार हो चुका है। सबने इसे गुरु कृपा माना।
इसके बाद साधु सबके पैर गर्म पानी से धोने लगा। हम सब मना करते फिर भी वह खींच खींच कर पैर धोता,
रोज वही भोजन बनाकर खिलाता। इस प्रकार वह साधु हमें वरदान बनकर मिला। पूरे 1 माह तक सबने पशु बलि निषेध का प्रचार किया, इसकी हानियां समझाईं,
देवताओं के रुष्ट होने की बात कही।
प्रतिदिन 20 किलोमीटर तक अलग अलग क्षेत्रों में पैदल नापते थे।
सबके पैरों में छाले पड़ जाते थे,
फिर भी गुरु श्रद्धा के वशीभूत हो सभी ने 1 माह के अंदर जन जागृति की हवा फैला दी। अब वह गांव जो खटीकों का था उन्हें भी भय लगा कि क्या सचमुच पशुबलि बंद हो जाएगी।
अतः पूरा गांव इकट्ठा हुआ और तय किया कि 8 ऐसे बूढ़े जो मरने वाले हों वे खड़े हो जाएं व 8ों की गर्दन उड़ा दें,
फिर भले फांसी पर लटक जाना पड़े।
इस प्रकार दोनों तरफ के जागरण का असर प्रशासन के कानों तक भी पहुंचा। वह भी कैसे चुप रहता।
पूरे जिले के प्रशासन की बैठक हुई।
वातावरण ऐसा बन गया था कि कब क्या हो जाए।
अतः पुलिस भी पूरी तरह चौकन्ना थी। किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए वहां पुलिस छावनी बन गई थी। नवरात्रि के अंतिम दिन हम 8ों बलिदानियों ने सुबह 4 बजे ही नहा धोकर मंदिर को घेर लिया, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवित रहते तक बलि न दे सके। उस समय वह साधु साथ नहीं था।
सभी अंध श्रद्धालु अपने साथ बकरा लिए हुए मंदिर की ओर आ रहे थे।
वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी।
इस सबसे मंदिर के अंदर जाने में दिक्कत होने लगी। हम 8ों ने भी स्पष्ट कर दिया कि बिना हमको मारे आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते।
हालात नाजुक बनते जा रहे थे। अचानक वे लंगोटीधारी साधु अपने कंधों पर बकरा लादे हुए प्रकट हो गए। अपने साथी को इस प्रकार बकरा लाते देखकर हम सभी आश्चर्य में पड़ गए। सब कुछ सोच पाते इसके पहले ही उन्होंने बकरे को नीचे पटका और जोर की गर्जना करते हुए बोल पड़े, पशु में भी आत्मा का निवास है।
यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। हिम्मत है
तो इस बकरे को काट कर दिखाओ। उस साधु के सिंहनाद में वह गर्जना थी कि जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले पशु बलि के पक्ष में खड़े थे सभी भाग खड़े हुए। मौका देखकर पुलिस ने भी कमान संभाल ली और धारा 144 लागू हो गई। सभी तितर बितर हो गए। गर्दन उड़ाने वाले खटीक भी खिसक लिए। हम आठों को लग रहा था कि आज तो हमारी गर्दन उड़ेगी ही, क्योंकि इसके लिए ही तो मथुरा से चले थे। किंतु पलक झपकते ही वह साधु आया, ललकारा और भीड़ को तितर बितर कर अंतर्ध्यान हो गया।
फिर कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिला।
तभी कुछ लोगों ने कहा, हमने तो उसे उसी समय नीचे देखा था।
750 सीढ़ियां 2-4 मिनटों में कैसे तय की जा सकती हैं?
अतः सबने एक स्वर से उन्हें चमत्कारी बाबा ही माना, जो ऐन वक्त पर अपने शिष्यों की रक्षा हेतु प्रकट हुए थे। अन्यथा क्षण भर की भी देर होती तो सभी की गर्दन कट जाती। पूज्यवर भला ऐसा कैसे होने देते।
साधु का भी कहीं अता पता नहीं था।
अतः आठों अपना डेरा उठाकर मथुरा आए।
गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए समाचार पूछा, कहो क्या हाल चाल है। सबने एक स्वर से कहा, आप हमसे क्यों पूछते हैं गुरुदेव।
आप स्वयं तो वहां मौजूद थे, आपकी क्षण भर की देरी हम सबकी गर्दन उड़ा देती। सुनकर गुरुदेव मुस्कुरा दिए। तब से वहां पशु बलि बिल्कुल बंद है। ऐसे क्रांतिकारी और परीक्षक भी थे पूज्य गुरुदेव।
मैं कहीं और भी रहता हूँ।
श्री संदीप कुमार, सन 1980 में इन्होंने दीक्षा ली और सन 1985 में स्थायी तौर पर शांतिकुंज आ गए। एक दिन मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव युग निर्माण कैसे होगा, अभी तो इसके कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते। गुरुजी ने कहा, तुम लोग क्या समझते हो।
क्या मैं केवल शांतिकुंज में ही निवास करता हूँ या कहीं और भी रहता हूँ।
मैं लगातार सजातियों को खींच रहा हूँ।
उस समय हमें लगा कि गुरुदेव का 5 शरीरों से काम करने का कथन पूर्णतया सही है। वहाँ क्या हो रहा है। इसी प्रकार जब गुरुदेव मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, तब एक कार्यकर्ता ने जिद पकड़ ली कि गुरुदेव आप 5 शरीरों से कैसे कार्य करते हैं, कुछ तो झलक हमें भी दिखाए।
पहले तो गुरुदेव टालते रहे, जब देखा ये मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने बिलासपुर का एक टेलीफोन नंबर दिया। कहा, पूछो वहाँ क्या हो रहा है। जवाब मिला, गुरुदेव अभी अभी प्रवचन से आए हैं व भोजन करने बैठे हैं। कार्यकर्ता सुनकर हतप्रभ रह गया। गुरुदेव के पैर पकड़ पुनः शंका न करने का वचन दिया।
इसी से मिलता जुलता एक प्रसंग और भी है। श्री जयराम मोटलानी जी बताते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए जिला कांकेर में आवरी आश्रम के प्रवास पर थे। दूर दूर से परिजन वहां आते रहते थे।
एक दिन एक बूढ़े बाबा जी आए।
उन्होंने बताया कि गुरुदेव जब उनके गांव में आए थे तो कार्यक्रम के दौरान मंच पर से ही उन्होंने एक गांव का नाम लिया और कहा कि इसी समय हम वहां पर भी कार्यक्रम करा रहे हैं, जिन्हें विश्वास न हो वे जाकर देख सकते हैं।
वह गांव हमारे गांव से 12 किलोमीटर दूर है। मैं वहां से उठा और साइकिल से तुरंत वहां पहुंचा।
जाकर देखा गुरुदेव मंच से उतरे ही थे और लोगों के साथ बातचीत करते हुए भोजन के लिए रवाना हो रहे थे। मैं उन्हीं पैरों तुरंत वापस मुड़ गया। सोचा शायद दूसरे रास्ते से गाड़ी से आ गए हों।
साइकिल से मुझे ज्यादा समय लगा। अपने गांव में पहुंचकर देखा तो गुरुजी वहां भी थे।
पूछने पर पता चला कि वे तो यहीं हैं। एक पल के लिए भी वह इधर उधर नहीं गए।
प्रसंग सुनाते हुए बाबा जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बाबा जी बोले, बेटा वह सबको अपना स्वरूप दिखा रहे थे, फिर भी हम लोग समझ नहीं पाए कि यह साक्षात भगवान हैं। अश्रु उनके गालों को भिगोते हुए गले तक जा रहे थे।
उनके हृदय की भावनाएं शब्दों के साथ साथ आंखों से भी बह रही थीं। तू मुझे देख रहा है।
श्री शिवप्रसाद मिश्रा जी, शांतिकुंज,
1970 की घटना है।
टाटा नगर में 1008 कुंडीय यज्ञ संपन्न होना था। गायत्री तपोभूमि से श्री रमेश चंद्र शुक्ला, जो पूज्य गुरुदेव के साथ चला करते थे, लोहरदगा झारखंड पधारे। मैं वहां बॉक्साइट पत्थर का व्यापार करता था। उन्होंने मुझसे यज्ञ के लिए अनुदान और समयदान मांगा।
मैंने जो कुछ बन पड़ा दिया और यज्ञ के एक माह पूर्व समयदान के लिए टाटानगर पहुंच गया।
वहां यज्ञ को सफल बनाने हेतु कार्य में जुट गया। मेरी निष्ठा को देखकर उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को मुख्य यजमान बना दिया। इस यज्ञ के उपरांत हमने पूज्य गुरुदेव से 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ के लिए निवेदन किया। उन्होंने कहा, अब समय नहीं है। सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। लोहरदगा पहुंचकर मैंने सोचा गुरुदेव के जन्मदिन वसंत पंचमी पर ही एक छोटा सा 9 कुंडीय यज्ञ कर लिया जाए। संकल्प कर लिया। उसी दिन रात्रि को लगभग 3 o'clock बजे एक आवाज सुनी, शिव प्रसाद, शिव प्रसाद। आवाज गुरुदेव की सी लगी। आंख खोली तो देखा जमीन से कुछ ऊपर स्वयं गुरुदेव ही साक्षात खड़े हैं। मैंने कहा, जी गुरुजी, आवाज आई, तू मुझे देख रहा है।
मेरी आवाज सुन रहा है। तूने वसंत पर्व पर यज्ञ करने का संकल्प लिया है। वसंत पर्व पर नहीं, 13-14 जनवरी को यज्ञ करना।
हमने अन्य जगहों से 2 दिन की कटौती करके यह समय तुम्हें दिया है। मैंने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। बस गुरुदेव चले गए। मैं प्रणाम भी न कर सका और किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति देखता ही रह गया। फिर सो गया।
थोड़ी देर बाद ही स्वप्न में देखता हूँ कि पम
लीलापत जी का एक एक्सप्रेस डिलीवरी पत्र आया है।
उसमें वही बातें लिखी हैं जो गुरुदेव ने कही थी। मैंने यह स्वप्न पत्नी को बताया और कहा संभवतः आज ही वह पत्र भी आ जाए।
आते ही मेरे पास माइंस पर भिजवा देना। प्रातः 8 o'clock बजे पोस्टमैन आया और एक्सप्रेस डिलीवरी पत्र दे गया। इस प्रकार गुरुदेव ने सूक्ष्म शरीर से स्वयं आकर कार्यक्रम का निर्देश दिया, जिसे हमने पूरी श्रद्धा व उत्साह के साथ संपन्न किया और कार्यक्रम भी आशातीत रूप से सफल रहा।
तेरे दोस्त का ऑपरेशन मैंने कर दिया है।
श्रीमती सावित्री गुप्ता, सन 1968 में इन्होंने दीक्षा ली और सन 1974 में स्थायी तौर पर शांतिकुंज आ गईं। शांतिकुंज में मुझे पत्र लेखन का काम मिला। उस समय कम ही लोग थे, प्रायः सभी पत्र हाथों से गुजरते थे, अतः पूर्व पत्रों का भी ध्यान रहता था। बरेली जिले के एक गांव से एक लड़के के पिता का पत्र मुझे आज भी स्मरण है। उन्होंने पूज्यवर से प्रार्थना की थी। पूज्यवर, मेरे लड़के को कैंसर है।
डॉक्टर ने कहा है भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो, अब उपचार कुछ नहीं है।
हे गुरुदेव,
मुझ पर कृपा करें,
मेरे बच्चे को ठीक कर दें, आदि आदि। लड़के का दोस्त भी गायत्री परिवार का सदस्य था।
उसने भी पत्र लिखकर अपने दोस्त की कुशलता के लिए गुरुदेव से निवेदन किया था।
उन दिनों न जाने कैसे पत्र लिखते ही पूज्यवर तक संदेश पहुंच जाते थे। अनेकों ऐसे अनुभव पत्रों द्वारा ज्ञात होते हैं। जल्दी ही फिर दोनों के पत्र आए।
दोनों ने अपने अपने पत्र में अपना अनुभव लिखा था।
पत्र लिखने के दूसरे ही दिन गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से मेरे लड़के के पास पहुंचे और कहा, बेटा
हम आ गए हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरा ऑपरेशन करता हूँ,
तू एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा।
इसके बाद गुरुदेव उसके दोस्त के पास गए और कहा, बेटा तेरे दोस्त का ऑपरेशन मैंने कर दिया है,
अब वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं।
जब दोनों दोस्तों ने अपना अपना अनुभव एक दूसरे को सुनाया तो वे दोनों आश्चर्यचकित हुए कि किस प्रकार दोनों के अनुभव एक समान हैं। फिर उन्होंने इसकी वास्तविकता की जांच करने की ठानी व डॉक्टर के पास गए और कहा, डॉक्टर साहब एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। डॉक्टर ने मना किया, कहा अभी कुछ दिन पहले ही तो चेक किया है, बार बार आवश्यकता नहीं है,
बस आप तो जैसे तैसे दिन काटिए।
फिर भी सबने जिद की कि एक बार फिर से चेक कर ही लें। तब अनमने मन से डॉक्टर ने चेक करना स्वीकार किया,
किंतु जब चेक किया तो घाव सूखता हुआ नजर आया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था,
इतना बड़ा घाव सूख कैसे रहा है। उसने फिर से देखा व पूछा, आप लोगों ने किस डॉक्टर को दिखाया है, कौन डॉक्टर मिल गया जिसने यह घाव सुखा दिया। डॉक्टर से हम केवल इतना ही कह पाए कि यह हमारे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है। इसी तरह डॉक्टर
कमल कुमार दत्ता जी को लिखा एक पत्र यहाँ उद्धृत है, जिसमें गुरुदेव स्वयं अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा संरक्षण की बात लिखते हैं।
इस पत्र में संरक्षण के साथ साथ अपने स्नेह का प्रकटीकरण और कर्तव्य पालन हेतु मार्गदर्शन, बहुत कुछ एक साथ कितने कम शब्दों में व्यक्त कर दिया गया है। इस पत्र में उनकी पत्र लेखन कला का भी दर्शन मिलता है।
हमारे आत्मस्वरूप, आपका पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। यूं पिछले सप्ताह हमारा सूक्ष्म शरीर इंदौर ही रहा है। रोग अब की बार अतीव कष्ट लेकर आया था। हमें प्रतीत हो रहा था कि बेटी श्रीपर्णा इस कष्ट को सहन न कर सकेगी, इसलिए सुरक्षा के लिए हमारा सूक्ष्म शरीर आप लोगों के पास ही बना रहा।
आप लोगों ने दौड़ धूप की, उससे हमें संतोष है। कर्तव्य पालन इसी प्रकार करना चाहिए, किंतु इतने पर भी बेटी श्रीपर्णा की इस बार की जीवन रक्षा का श्रेय माता की विशेष कृपा को ही है। अब अनिष्ट टल गया है,
जो कमजोरी रही होगी वह भी जल्दी ही दूर हो जाएगी। बीमारी के समय जिन जिन स्वजनों ने सेवा एवं सहानुभूति का व्यवहार किया हो, उन सबको हमारा धन्यवाद कहना।
तुम्हारी धर्मपत्नी भी वह है, पर असल में तो हमारी प्रिय पुत्री ही है। तुमने या जिसने भी उसकी सेवा की है, उन सबके हम हृदय से कृतज्ञ हैं। जब तक सौ श्रीपर्णा की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक हमें चिंता बनी रहेगी, सो उसका समाचार हमें भेजते रहें। यूं सूक्ष्म शक्ति से हम उसकी आवश्यक जानकारी रख ही रहे हैं और संपर्क भी बनाए हुए हैं।
श्रीमती श्रीपर्णा दत्ता के नाम भी उन्होंने पत्र लिखा, जिसमें लिखा, इस नए जीवन को तुम ऋषि पुत्री, ऋषि पत्नी और ऋषि माता की तरह व्यतीत करना।
काम पूरा होने पर शक्ति वापस हो जाएगी।
श्री कैलाश प्रसाद लांबा, कोरबा।
घटना सन 84 सूक्ष्मीकरण में जाने से 3-4 माह पूर्व की है।
मैं हरिद्वार गया था। गुरुजी मुझसे अकेले में मिले व कहा, बता बेटा तेरा क्या क्या चल रहा है।
मैंने कहा, जप अधिक करता हूँ, अतः समय कम मिल पाता है। अपना काम भी करता हूँ व शाम को प्रचार में भी निकलता हूँ।
एक दो सेकंड के बाद उन्होंने कहा, बेटा ऐसा कर, तू जप कम कर, ध्यान अधिक कर। उगते सूर्य में गायत्री माता का ध्यान करो। 2-3 तरीके से गायत्री उच्चारण की विधि उन्होंने स्वयं बतलाए। गले से उच्चारण करना, तालू से उच्चारण करना व नाक से उच्चारण करने की विधि बतलाए। नाक से आवाज को ऊपर उठाकर उच्चारण करने से मंत्र का कंपन भरिकुटी को ठोकर मारता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, बेटे मुझे तुझसे जितना काम लेना है उतनी शक्ति दूंगा तथा वह अनवरत मिलती रहेगी, किंतु जब काम पूरा हो जाएगा तब शक्ति वापस हो जाएगी। श्री लांबा जी कहते हैं, उस अभ्यास को मैंने बहुत दिनों तक किया, सूक्ष्मीकरण तक वह शक्ति रही। साधना के क्षेत्र में पूज्यवर ने मुझे काफी ऊंचा उठाया। उन दिनों शरीर के किसी भी अंग को यहाँ तक सहस्रार तक को कंपित कर लेता था, जिसके लिए जो कह देता वह पूरा होता।
अतः घर वाले कहते, किसी के प्रति मन में दुर्भावना मत रखना,
अन्यथा उसका बुरा होगा। सूक्ष्मीकरण के बाद वह शक्ति चली गई। जैसा गुरुवर ने चाहा था ठीक वैसा ही हुआ। सिंगल कोट अश्वमेध यज्ञ जयपुर के पर्चे पूज्य गुरुदेव ने बांटे। श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी जयपुर राजस्थान के सक्रिय कार्यकर्ता हैं।
सन 1974 में वे पूज्य गुरुदेव से जुड़े और तब से आज तक सतत संपर्क में बने हुए हैं।
अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम अश्वमेध यज्ञ जयपुर में हुआ था। प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ के साथ परिजनों की अनेकों स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी जयपुर अश्वमेध यज्ञ के संयोजक थे।
वे बताते हैं कि उन्होंने प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक पहुंचने का प्रयास किया और उसके लिए टोलियां गठित की गईं। एक दिन प्रचार कार्य के लिए 2-3 टोलियों को दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां सड़क यातायात नहीं है, भेजा गया।
उन परिजनों ने लौटकर बताया कि जहां वे निमंत्रण देने गए थे वहां के निवासियों ने बताया कि उन्हें तो निमंत्रण मिल चुका है। पत्रक पर पूज्य गुरुदेव की फोटो देखकर वे सब आश्चर्यचकित थे और बता रहे थे कि यही व्यक्ति तो हमें 2-3 दिन पूर्व ही यज्ञ का निमंत्रण और पॉम्पलेट देकर गया है।
कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसा वहां पर बहुत से लोगों ने बताया और सब लोग पूरे विश्वास के साथ बता रहे थे कि यही व्यक्ति था,
जबकि उन गांवों के लोग पूज्य गुरुदेव तो क्या गायत्री परिवार को भी नहीं जानते थे।
उन कार्यकर्ता भाइयों की बात सुनकर हमें पूज्यवर के उन शब्दों का ध्यान हो आया कि बेटा शरीर छोड़ने के बाद हम हजारों गुनी शक्ति से काम करेंगे।
हम सबको यही आभास हुआ कि पूज्य गुरुदेव ने अश्वमेध यज्ञ में न केवल सूक्ष्म रूप से संरक्षण ही दिया बल्कि प्रचार कार्य में स्थूल शरीर धारण कर स्वयं पॉम्पलेट भी वितरित किए। हाँ हाँ, यही व्यक्ति थे। यह लखनऊ अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग है। खीरी लखीमपुर जिले के एक गाँव पलिया कलां के लोग जब अश्वमेध यज्ञ में आए तो वे परम पूज्य गुरुदेव का चित्र देखकर हैरान रह गए।
यहाँ वहाँ परिजनों से उनके बारे में पूछताछ करने लगे। लोगों ने बताया कि यह हमारे गुरुदेव हैं।
तब वे गुरुदेव से मिलने की इच्छा व्यक्त करने लगे। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि परम पूज्य गुरुदेव को शरीर छोड़े 3 वर्ष हो गए हैं तो वे अत्यंत विस्मित रह गए।
उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है,
क्योंकि यही व्यक्ति तो हमारे गाँव में निमंत्रण देने आए थे, उन्होंने यही कपड़े पहन रखे थे।
उनकी बात सुनकर गायत्री परिवार के परिजनों ने कहा, यह कैसे हो सकता है, वह कोई और होंगे, आपको भ्रम हुआ होगा। तब वे लोग एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, साहब हमसे क्या पूछते हैं, इनसे पूछिए, ये भी तो मिले थे। वे लगभग 15-20 व्यक्ति थे। सभी एक स्वर में कहने लगे, हाँ हाँ,
यही व्यक्ति थे, बिल्कुल यही व्यक्ति थे। हम सबके पास आए थे और हमें निमंत्रण के साथ साथ यज्ञ का पर्चा भी दिया।
उन्हीं के बताने पर तो हम आए हैं। और श्रद्धावनत हो वहीं से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करके जयकार करते हुए कहने लगे, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए।
आपके गुरुदेव हमारे गांव पधारे, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया।
आज उस गांव की शाखा बहुत सशक्त है।
6ठा स्थान ग्वालियर। श्री रामनिवास गुप्ता ग्वालियर। किसी अखंड ज्योति में मैंने पढ़ा था कि दिनांक 15-2 को पूज्य गुरुदेव देश के विभिन्न दूर दूर के 5 स्थानों पर एक ही समय पर उपस्थित होकर प्रवचन आदि कर रहे थे,
जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि पूज्य गुरुदेव एक बार में 5 शरीरों से एक साथ कार्य करते थे।
यह बात मुझे भी भली भांति मालूम थी, परंतु उस दिन से मेरी यह धारणा बदल गई और यह बनी कि पूज्य गुरुदेव मात्र 5 शरीरों से ही नहीं बल्कि अनगिनत शरीरों से एक ही समय एक साथ विभिन्न स्थानों पर कार्य करते थे, क्योंकि उसी दिनांक 15-2 को पूज्य गुरुदेव ग्वालियर में भी थे। उक्त अखंड ज्योति के उस दिनांक के 5 स्थानों के अतिरिक्त 6ठा स्थान ग्वालियर भी है। घटना इस प्रकार है कि पूज्य गुरुदेव दिनांक 13-2 को ग्वालियर पधारे। संध्या को कार्यकर्ताओं से मिलने के पश्चात आगरे की गोट लाला का बाजार लश्कर आगरे साहब के निवास पर रात्रि को विश्राम किया। दूसरे दिन 14-2 को प्रातः गायत्री यज्ञ के पश्चात वहीं पर स्थापित एक पंचमुखी गायत्री की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। दोपहर को गोपाल तेल मिल बिरला नगर ग्वालियर में भाई श्री छोटेलाल जी गर्ग के निवास से जल यात्रा के साथ पूज्यवर की एक शोभायात्रा भी निकाली, जो गायत्री मंदिर ग्वालियर पर समाप्त हुई। उस दिन रात्रि को तानसेन रोड स्थित भाई श्री डीओ भार्गव के निवास पर विश्राम किया। तीसरे दिन 15-2 को प्रातः गायत्री यज्ञ के पश्चात गायत्री मंदिर ग्वालियर में स्थापित गायत्री माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। सायं वहीं पर प्रवचन के पश्चात रात्रि की गाड़ी से मथुरा रवाना हुए थे। वह बुजुर्ग कौन थे? श्री नारसिंह भाई परमार, बड़ौदा गुजरात। नारसिंह भाई सन 1988 में पूज्य गुरुदेव से जुड़े।
श्री नारसिंह भाई परमार जी ने बताया कि उनकी पत्नी और कुछ बहनें बड़ौदा के पास किसी गांव में कार्यक्रम करवाने गई थी। लौटने में रात हो गई थी।
अंधेरे सुनसान रास्ते में इनकी गाड़ी का अन्य गाड़ी से बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया।
गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी कि लगता था कोई बच नहीं पाया होगा। गाड़ी में सवार सभी लोग गाड़ी में ही फंस गए, किसी भी प्रकार बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ पा रहा था।
उसी समय अचानक न जाने कहां से उस सुनसान रास्ते में एक बुजुर्ग मददगार बनकर आए। उनके हाथ में टॉर्च थी। उन्होंने एक बहुत छोटे संकरे से रास्ते से सभी बहनों को धीरे धीरे बाहर निकाला।
किसी भी बहन को कोई खास चोट नहीं आई थी।
उस रास्ते पर बहुत कम गाड़ियों का आवागमन होता था, पर थोड़ी ही देर में एक गाड़ी आ गई।
उन बुजुर्ग ने सभी बहनों को उस गाड़ी में बैठाया। जब सभी बहनें उस गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो उन बुजुर्ग बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए उनकी ओर मुड़ी, परंतु वह बुजुर्ग तो न जाने कहां गायब हो गए थे। किसी को भी वह दिखाई नहीं दिए। सबको आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी वे कहां चले गए। अगले दिन परिजन अपनी गाड़ी को देखने आए।
सभी देखकर हैरान थे कि इतने संकरे रास्ते से बहनें बाहर कैसे निकली।
गाड़ी की हालत देखकर सबको और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि इसमें सवार लोग बच कैसे गए।
और किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी,
जबकि गाड़ी को देखकर लगता था कि इसमें सवार कोई भी आदमी जीवित नहीं बचा होगा। अब सबको गुरुदेव का आश्वासन याद आ रहा था कि बेटा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।
सभी को यही आभास हुआ कि गुरुसत्ता ने अपने कार्य के लिए गई अपनी बच्चियों की रक्षा की थी, चोरों से घर को बचाया।
नारसिंह भाई परमार जी बड़े ही भावुक होकर बताते हैं कि एक बार वे 9 दिवसीय सत्र के लिए शांतिकुंज आए।
पीछे से कुछ चोरों ने उनके घर में ताला लगा देखा तो चोरी करने की योजना बनाई।
रात को जब वह चोरी करने पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला है और एक वृद्ध दंपति अंदर बैठे हैं। दिन भर ताला लगा देखकर रोज रात को वह चोरी करने के लिए आते, लेकिन रात को घर खुला पाकर लौट जाते।
वह यह देखकर हैरान थे कि दिन भर तो ताला लगा रहता है और रात को ये वृद्ध कहां से आ जाते हैं। लेकिन वे लगातार आते रहे और 9-10 दिन के बाद एक रात जब उन्होंने पड़ोस वाले घर में ताला देखा तो उस घर में चोरी कर ली और पकड़े भी गए। जब पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए लाई तो चोरों ने बताया कि असल में चोरी तो हमें साथ वाले घर में करनी थी, क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार वे लोग 10-12 दिन के लिए बाहर गए थे, पर रोज रात को उनका घर खुला मिलता और कोई बुजुर्ग दंपति आकर बैठ जाते थे। सो पड़ोस वाले घर में जब ताला मिला तो हमने वहीं चोरी कर ली। उनकी बात सुनकर पड़ोसी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है।
परमार जी तो 10-12 दिन के लिए हरिद्वार गए हुए थे।
इस बीच उनके घर पर भी कोई नहीं था।
पुलिस चोरों को लेकर परमार जी के घर आई। जैसे ही वे सब घर के भीतर आए, चोर उनके घर में लगे गुरुजी माताजी के चित्र को देखकर बोले, यही तो हैं वे दोनों जो रोज रात को यहाँ आकर बैठ जाते थे। सब लोग उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित थे और हमारा पूरा परिवार गुरुवर के आगे नतमस्तक था।
कितना ध्यान था उन्हें अपने बच्चों का। बच्चे उनके पास हैं तो वे पीछे से उनके घर की रखवाली भी कर रहे हैं।
जीवन की दिशा ही मोड़ दी।
नाम न छापने का आग्रह करते हुए पंजाब की एक बहन ने अपनी आपबीती कुछ इस प्रकार सुनाई। उनके घर में बहुत कलह क्लेश का वातावरण बना हुआ था। पति को अचानक ही व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ था।
चारों ओर से असफलता मिल रही थी।
इस वजह से उनका स्वभाव और भी अधिक उग्र हो गया था।
सासू माँ भी दिन भर क्लेश किए रहती। एक दिन कुछ अधिक ही कहीं माइनस सुनी हो गई। मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। निराशा के भाव मन पर हावी हो गए।
मन में आया कि इस जीवन से मौत ही भली है।
पास ही रेल पटरी थी। मैं घर से निकल पड़ी। रोती जा रही थी और रेल पटरी के बीचों बीच चलती जा रही थी। अचानक एक वृद्ध ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पटरी से नीचे उतार लिया और रेलगाड़ी धड़धड़ाती हुई निकल गई।
उसके गुजर जाने के बाद मैंने उन वृद्ध से कहा, बाबाजी, यह क्या किया आपने?
मुझे मर जाने दिया होता, क्यों बचाया? उन्होंने मुझे समझाया, बेटी,
जीवन बहुत कीमती है। फिर मेरी सारी समस्या सुनी और मुझे समझा बुझाकर एक रिक्शा वाले को बुलाकर रिक्शा में बिठा दिया और कहा, जा बेटी, अपने घर जा,
सब ठीक हो जाएगा।
रास्ते में मुझे ख्याल आया कि आज मेरी सहेली के घर में कोई पूजा है। उसने बुलाया था, क्यों न मैं उसके घर चली जाऊं। मैंने रिक्शा उसके घर की ओर मोड़ लिया। जब मैं उसके घर पहुंची और पूजा में जो तस्वीर रखी थी उसे देखकर मैं हैरान रह गई। पूजा समाप्त हो जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि यह जो व्यक्ति हैं, मैं अभी अभी इनसे मिलकर आ रही हूँ, यह कौन है, कहाँ रहते हैं, मुझे कैसे मिलेंगे?
उसने मुझे बताया कि यह हमारे गुरु पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हैं।
तुम इनसे मिलकर आ रही हो, यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही तो इन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। तुम जिससे मिलकर आ रही हो वह कोई और होगा। सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गई, पर मेरे साथ जो घटित हुआ था उसे भी मैं झूठला नहीं सकती थी।
उसके बाद मैं शांतिकुंज भी आई। मैंने दीक्षा ली, हमारी सारी समस्याएं जल्दी ही सुलझ गईं, घर का वातावरण ही बदल गया।
मैं और मेरे पति दोनों ही गुरुजी के ऋणी हैं। हम उनसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी शरण में लिए रहें। माताजी ने सेवा की।
न केवल गुरुजी बल्कि माताजी भी कम शक्ति संपन्न नहीं थी।
स्वयं गुरुदेव के शब्दों में, माताजी भगवान के वरदान की तरह हमारे जीवन में आईं।
उनके बगैर मिशन के उदय और विस्तार की कल्पना करना तक कठिन था। लोगों ने अपनी स्थूल आंखों से उन्हें गुरुजी की सहधर्मिनी ही समझा, परंतु जिनने उनके अनुदान पाए हैं वे ही उस भगवत सत्ता को जान पाए।
माताजी के विषय में भी ऐसे अनेकों प्रसंग मिलते हैं जब उन्होंने सूक्ष्म शरीर से परिजनों की सहायता की।
पाथाखेड़ा, बैतूल के एक कार्यकर्ता की एक मासीय सत्र हेतु शांतिकुंज आने की तीव्र उत्कंठा थी। उन्होंने शांतिकुंज पत्र लिखा, अनुमति पत्र भी आ गया, लेकिन फिर ये असमंजस पैदा हुआ कि पत्नी की प्रसूति का समय इसी बीच आ सकता है, तो जाऊं कि न जाऊं।
इससे पहले भी वह एक बार किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, सो इस अवसर को वह चूकना नहीं चाहते थे।
उनकी पत्नी शांतिकुंज के विषय में कुछ विशेष नहीं जानती थी, फिर भी पत्नी ने पति की तीव्र उत्कंठा देखी तो कहा, आप चिंता न करें,
यहाँ आसपास के कोई भी परिजन आ जाएंगे, मदद करेंगे,
आप भले जा सकते हैं। शांतिकुंज जाने की उनकी उत्कंठा बड़ी प्रबल थी, सो पत्नी को उसी अवस्था में छोड़ वे चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद एक वृद्ध माताजी उनके घर में आईं। बोली, बेटी, मुझे तुम्हारे पति ने तुम्हारी देख माइनस भाल करने के लिए कहा था, सो मैं आ गई हूँ। तुम बिल्कुल चिंता न करना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी।
थोड़े ही दिन में संतान पैदा हुई। उन माताजी ने जच्चा और बच्चा दोनों की पूरी देखभाल की,
रात दिन उनके पास रही। जब एक माह होने को आया, उनके पति शांतिकुंज से वापस आने वाले थे, तो वह माताजी उन्हें बोली, बेटी,
अब तो तुम स्वस्थ हो चली हो और दो तीन दिन में तुम्हारे पति भी आ ही जाएंगे,
सो अब मैं अपने घर जाऊंगी,
मुझे और भी ढेरों काम है। उन्होंने माताजी को रोकना चाहा, पर वे रुकी नहीं।
पति जब घर पहुंचे तो पत्नी ने सब हाल बताया। जानकर वह कार्यकर्ता बड़े हैरान हुए कि उन्होंने तो किसी महिला को देख माइनस भाल के लिए नहीं कहा था। पत्नी भी हैरान हुई कि फिर वह महिला कौन थी, और इतनी देख माइनस भाल, इतनी देख माइनस भाल तो कोई अपने सगे रिश्तेदार भी नहीं करते।
फिर जब उन कार्यकर्ता ने देवस्थापना चित्र निकाला और उसे पूजा में रखने के लिए कहा, तो उस चित्र को देखकर उनकी पत्नी चौंक उठी और बड़ी हैरानी से बोली, अरे, यही तो वह माताजी हैं
जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की। ऋषि सत्ता का आश्वासन, बेटा तू मेरा काम कर, तेरा काम मैं करूंगा, उनके जीवन में चरितार्थ हुआ था।
दोनों पति पत्नी कृतज्ञता से आंसू बहा रहे थे।
हृदय की बंद धड़कन पुनः चालू हुई। डॉक्टर बसंत कुमार पांडेय, रीवा। मई 94 में मुझे गंभीर हृदयघात हुआ। मेडिकल कॉलेज रीवा के गांधी स्मारक अस्पताल के इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में एक महीने भर्ती रहा। मेडिकल विभागाध्यक्ष ने तुरंत तीसरी हॉट सर्जरी के लिए अपोलो हॉस्पिटल मद्रास जाने की सलाह दी। इसके पूर्व बॉम्बे हॉस्पिटल में दो बार ओपन हॉट बाईपास सर्जरी एवं एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी। अगस्त 94 में अपोलो हॉस्पिटल मद्रास में हॉट सर्जरी हुई।
ऑपरेशन थिएटर से आए सी पीयू में लाया गया।
अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई, बीपी गिरने लगा और हृदय की गति कमजोर पड़ने लगी।
नस बड़े डॉक्टरों में भाग दौड़ मच गई।
एकदम सब कुछ समाप्त,
हृदय की धड़कन बंद हो गई।
पत्नी कांता दूर खड़ी हतप्रभ थी। इतने में एक शुभ्रवस्त्रा छोटेकद की स्थूलकाय तेजस्वी महिला अचानक कमरे में आई। मुस्कराते हुए धीरे धीरे बिस्तर के पास व्यस्त डॉक्टर नर्सों के बीच आकर खड़ी हो गई और कहा, क्या हो गया? सिर पर हाथ फेरा, एक क्षण रुकी, कहा, ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे पंपिंग किया। धड़कन पुनः प्रारंभ हो गई। पत्नी रोकने के बावजूद जबरदस्ती कमरे में आकुल व्याकुल होती हुई आई और पूछा, क्या हो गया इन्हें?
कैसे हैं? और वह माताजी जो अभी अभी कमरे में आई थी, कहाँ गई?
डॉक्टरों ने कहा, हाँ, एक शुभ्रवस्त्रा तेजस्वी महिला आई तो थी, कहाँ गई पता नहीं, शायद बाहर होंगी।
लेकिन आप भीतर कैसे आ गई?
बाहर जाइए, पांडेजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, अब ठीक है।
कृपया आप बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। कमरे के बाहर देखा, ICU
के बाहर देखा, सभी जगह देखा, वह ज्योतिमी महिला कहीं दिखाई नहीं पड़ी। निश्चय ही वह वंदनीय माताजी ही थी जो अपने बेटे की हृदय की धड़कन को अपने पावन स्पर्श से पुनः चालू करने के बाद अंतर्ध्यान हो गई थी। होश आने पर जब पत्नी ने यह सब पूरा विवरण बताया तो बरबस ही आंखों से अविरल अश्रुधारा बह उठी। धन्य है ऐसी ममतामयी वात्सल्यमयी माताजी और परम पूज्य गुरुदेव।
उनके बताए रास्ते पर चलना एवं दिए गए निर्देशों को पूरा करना ही अब हमारे जीवन का उद्देश्य है।
5. साक्षात शिव स्वरूप।
गुरुजी माताजी अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे। साधारणतः तो महापुरुष स्वयं को छिपाए रहते हैं, परंतु कभी कभी संकेतों में वे स्वयं को प्रकट भी करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं कि सुनने वाला देखने वाला अचंभित हो जाता है, विचार करता रह जाता है। जिसके पास श्रद्धा है, विश्वास है, जो भक्त है, वही उस कथन के मर्म को समझ पाता है। अन्यों के दिलो दिमाग पर तो जैसे वे कोई पर्दा डाल देते हैं और समय बीत जाने पर वे उन घटनाओं को स्मरण कर बस इतना ही कह पाते हैं कि काश
हम उस समय समझ पाते।
आज हम सब उन्हें साक्षात शिव, महाकाल, अवतारी चेतना आदि नाना प्रकार के संबोधनों से अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। कभी कभी परिजनों के सामने उन्होंने स्वयं को प्रकट भी किया है।
ऐसे ही कुछ प्रसंग, कुछ वाक्यांश यहाँ दिए जा रहे हैं।
कुएं का पानी मीठा हो गया।
श्री हनुमान शरण रावत जी एवं श्रीमती मिथिला रावत सन 1969 से पूज्य गुरुदेव के संपर्क में रहे। सन 1983 में गुरुदेव के कहने पर पूर्ण रूपेण शांतिकुंज आ गए। हम एक कार्यक्रम हेतु दिगौड़ा टीकमगढ़ गए। वहां के एक कार्यकर्ता भाई श्री सोनकिया जी ने कहा, बहन जी, आज हम आपको वहां ले चलते हैं जहां से गुरुजी कभी पैदल गए थे। वे हमें उस रास्ते से ले गए और बोले, इन गलियों में से गुरुजी कभी अपना सामान भी स्वयं लेकर चले थे। गुरुजी एक हाथ में लोहे का बक्सा और कंधे पर अपना बिस्तर लेकर चलते थे। उनकी इस सादगी से कोई जान ही नहीं पाया कि वे इतने बड़े महापुरुष हैं। मैंने कहा, गुरुजी अपना सामान मुझे दे दीजिए, तो वे बोले, नहीं नहीं, अपना ही सामान है। हम लोग वहां पहुंचे जहां मंदिर बन रहा था। वहां पर एक कुआं खोदा गया था जिसका पानी खारा था।
लोगों ने बताया कि कितनी मेहनत से कुआं खोदा गया और इसका पानी खारा निकल गया।
अब इसका क्या उपयोग,
क्या करें?
गुरुजी ने सब बात सुनी और कहा, अच्छा,
खारा है बेटा, पानी खारा है,
लाओ रस्सी बाल्टी, देखें। गुरुजी ने स्वयं कुएं से पानी निकाला और उसे पिया। फिर बोले, बेटा
ये तो मीठा है, कहाँ खारा है,
देखो
कहाँ खारा है। और उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए दिया। सबने पानी पिया और सब हैरान रह गए कि खारा पानी मीठा कैसे हो गया।
तब सबने गुरुजी की शक्ति को पहचाना और उनकी जय जयकार करने लगे।
कोई बीमार है?
पंडित लीलापत शर्मा जी पूज्य गुरुदेव के प्रारंभिक शिष्यों में से थे।
सन 1953 में डबरामा प्र में वे पूज्य गुरुदेव से जुड़े व सतत संपर्क में बने रहे।
सन 1967 में पूज्य गुरुदेव ने उन्हें मथुरा बुला लिया। सन 1971 में पंडित जी को मथुरा का सब कार्यभार सौंपकर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी शांतिकुंज हरिद्वार आ गए। पंडित जी ने मिशन की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली।
गुरुदेव के साथ बहुत सी यात्राएं भी की।
उन सब संस्मरणों को उन्होंने पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है।
परिजन उनके संस्मरणों को उस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। जब मिशन अपनी शैशव अवस्था में था, उस समय पूज्य गुरुदेव ने कितना परिश्रम करके और कितना तप लुटाकर शाखाएं खड़ी की, उसके विषय में बताते हुए पंडित जी ने असम का एक संस्मरण सुनाया था।
गायत्री परिवार के कार्यकर्ता ने एक गांव में यज्ञ रख दिया और पूज्यवर को बुलाया।
कई बार वहां गया, यज्ञ के बारे में समझाया, किंतु पता नहीं क्यों किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहां तक कि पूज्य गुरुदेव भी उस गांव में पहुंच गए, फिर भी यज्ञ में आने को कोई तैयार नहीं था और न ही वे लोग आए।
पूज्यवर ने सारी स्थिति भांप ली।
वहीं आसपास जो ग्रामीण टहल रहे थे उन्हें बुलाकर पूछा, इस गांव में कोई वृद्ध बीमार है?
हाँ, ऐसे तो कई लोग हैं, ग्रामीणों ने जवाब दिया।
पूज्यवर ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। ग्रामीण दौड़े और अपने अपने घरों से जो भी बीमार था, वृद्ध था, कुछ अन्य समस्या थी, सभी को ले आए। कुछ स्वयं आ गए, कुछ को सहारा देकर ले आए। गुरुदेव तत्काल उनकी समस्याओं के निवारण हेतु जुट गए। बीमार को, तुझे कुछ नहीं हुआ है, कह दिया। वृद्ध को, स्वस्थ रहोगे, कहा। किसी की कोई समस्या थी, उसे कह दिया, समस्या ठीक हो जाएगी। अब तो सुन सुनकर पूरा गांव दौड़ पड़ा।
महात्मा जी के आने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई।
सभी अपनी अपनी समस्या बताने लगे और समाधान पाकर निहाल हो गए। दूसरे दिन पूरा गांव यज्ञ में शामिल था।
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने यज्ञ में भाग न लिया हो। इस तरह उन्होंने अपने तप की शक्ति से मिशन का प्रचार प्रसार किया।
पंडित जी कहते थे, मैं तो मूक दर्शक की नाई, अवाक रहकर उन लीलापति की लीला देखता रहा। असली नाम तो उनका लीलापति होना चाहिए था।
आदिवासियों को भी अपना बना लिया।
श्री भास्कर सिन्हा जी सन 1963 में पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए और सन 1976 में गुरुदेव के कहने पर सपरिवार शांतिकुंज आ गए। हम सन 1981 में पूज्यवर के साथ शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा के दौरे पर थे। मार्च का महीना था।
होली में 10-15 दिन बचे थे।
सभी ओर होली का माहौल था। हम सब कार्यक्रम हेतु जगदलपुर जा रहे थे। सड़क सुनसान थी। एक स्थान पर पुलिस ने रोका पूछताछ की व कहा, आगे मत जाओ,
आदिवासी लूटपाट करते हैं।
पंडित लीलापत शर्मा जी भी साथ थे। उन्होंने गुरुदेव की ओर देखा। गुरुजी ने कहा, दूसरा रास्ता हो तो देखो। एक दूसरा रास्ता था। कुछ दूर उस पर गए, पता चला वह काफी लंबा है, अतः गुरुजी ने कहा, पहले वाले से ही चलो। दोपहर 12:30-1 बजे के आसपास काफी दूरी पर भीड़ दिखाई दी। पत्ते लपेटे हुए लगभग 100-150 आदिवासियों की भीड़ थी। होली के समय लूट सामान्य बात थी। सभी गंडासा, भाला, तलवार से लैस थे। गाड़ी आगे बढ़ाएं कि पीछे चलें असमंजस था। गुरुजी ने कहा, गाड़ी चलने दो, कुछ दूर पहले गाड़ी खड़ी करना व तुम सब उतरना मत, केवल मैं ही उतरूंगा। उस समय लगा कि गुरुजी कुछ सोच रहे हैं। गाड़ी उनके पास पहुंचने ही वाली थी कि गुरुजी हड़बड़ा कर बोले, रुक बेटा,
जब तक मैं न कहूं तुम लोग उतरना मत। गुरुदेव उतरकर बोनट के पास खड़े हो गए।
रॉड वगैरह लिए हम बैठे रहे। पूज्यवर थोड़ी देर दीक्षा देने की मुद्रा में खड़े रहे, फिर आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ ऊपर उठाया।
पता नहीं कहां से उनके बीच में से एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। उसके हाथ में 3 मालाएं थी। वह बूढ़ा दौड़कर आया और पूज्यवर से 3 कदम दूरी पर दंडवत प्रणाम की मुद्रा में लेट गया।
उसे देखकर उसका अनुसरण करते हुए वे सभी दौड़े और सबने साष्टांग प्रणाम किया। स्थिति एकदम भिन्न हो गई, जैसे जादू हो गया हो। गुरुदेव ने उन्हें कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रित किया।
उस स्थिति से निपटने में हम लोगों को 1.5 घंटा लगा,
पर जब हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो देखकर अचंभित रह गए। वे सभी जिन्होंने रास्ता रोका था, जगदलपुर प्रवचन पंडाल में जाने किस रास्ते से व कैसे हमसे भी पहले पहुंच गए थे। गुरुदेव ने अपनी ब्रज भाषा में कहा, देखो, हम लोग 7 बजे पहुंचे हैं और वे भी इस समय तक आ गए। फिर बोले, उन सभी को मंच तक आने दिया जाए। गुरुदेव ने अपने सामने मंच के पास उन बूढ़े भील महाशय को बैठाया। सभी ने पूरा प्रवचन सुना। अंत में पूज्यवर ने उन सभी का तिलक किया, तब वे सब प्रणाम करके घर वापस हुए। गंगाजल पीकर गंगा को रोका। श्री केसरी कपिल जी, शांतिकुंज।
बात अगस्त 1987 के आसपास की है। पूज्य गुरुदेव ने मुझे बुलाकर कहा, बेटे, मुझे गंगाजल पीने का मन है।
माताजी से पात्र लेकर गंगा जल लिया। मेरे द्वारा लाया जल गुरुदेव लेंगे, यह सोचकर खुशी से दौड़ा हुआ गया और केन में जल भरकर ले आया। गिलास में जल भरकर पूज्य गुरुदेव को देकर लौटने लगा।
गुरुदेव ने जल पीते हुए कहा, रुक जा। मैं कमरे के दरवाजे पर रुक गया।
मुझे खड़ा देखकर गुरुदेव बोले, तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, तुम जाओ। मैं जल भरा केन वहीं छोड़कर आ गया। उसी वर्ष दिसंबर में पूर्णिया जिले के तेलदिया गांव में प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे भेजा गया।
उन्हीं दिनों समाचार पत्रों में उत्तरी बिहार में भयावह बाढ़ के समाचार आ रहे थे,
जिनके अनुसार आज़ादी के बाद बने उत्तरी बिहार की नदियों के अनेक तटबंध टूट गए थे। जान माल की भारी क्षति हुई थी। गांव के गांव बह गए थे।
प्लास्टिक की छत बनाकर लोग राजपथ पर तटबंधों के पास रहकर बचने का प्रयास कर रहे थे, पर इधर हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, हमें तो गंगा मैया ने बचाया। पूछने पर पता चला, जिन दिनों उत्तरी बिहार की सभी नदियों में बाढ़ थी,
गंगा का जल स्तर नीचा था और सभी नदियों का जल उसमें समाकर समुद्र में जा रहा था।
गंगा मर्यादा में ही बहती रही।
लोगों की बात सुनकर मुझे उस दिन का प्रसंग याद आया जब गुरुदेव ने गंगा जी से जल मंगा कर पिया था और घूंघट भर कर कहा था, रुक जा। मैं बरबस ही यह सोचने के लिए मजबूर था कि क्या गुरुदेव ने उस दिन माँ गंगा को रुकने का आदेश दिया था और बिहार को दोहरी त्रासदी से बचाया था। मेरे गुरु मेरे घर आए, मैं भी तेरे घर आया।
श्री रघुवीर सिंह चौहान जी सन 1977 में पूज्य गुरुदेव से जुड़े और सतत संपर्क में बने रहे। उनका पैतृक घर ज्वालापुर हरिद्वार में है, किंतु गुरुदेव से जुड़ने के कुछ समय बाद ही चौहान जी परिवार को ज्वालापुर में ही रखकर स्वयं स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए थे।
हम लोग ज्वालापुर में रहते हैं।
एक परिजन शांतिकुंज जाने के लिए लगभग 6 माह से कह रहे थे, सो हम पत्नी सहित शांतिकुंज आए।
कक्षा 7 में मैंने एक कथा सुनी थी कि कलयुग में जब भगवान आएंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा।
वे स्वयं चिन्ह प्रकट करेंगे ताकि भक्त पहचान ले, तब भक्त भगवान को अपने घर लाएगा। पहली बार जब गुरुजी से मिले तो उन्होंने कहा, तुम पृथ्वीराज चौहान की जाति के हो। सुनकर हमें गर्व हुआ। मैंने उनका मस्तक देखा तो चकित रह गया। आज्ञा चक्र में बहुत देर तक गहरा गड्ढा जैसा दिखाई देता रहा, वहां से प्रकाश निकल रहा था।
घर आने पर 3 दिनों तक नींद नहीं आई।
गुरुजी के विषय में ही विचार करता रहा। पहले तो सोचा कोई तांत्रिक होंगे, फिर अचानक वह कथा याद आई, सो हम शीघ्र ही शांतिकुंज आए कि देखें यदि वे भगवान हैं तो हमारे बुलाने पर घर आते हैं कि नहीं। जैसे ही हम पूज्यवर के पास पहुंचे, हमारे कुछ बोलने से पहले ही वे खुद बोल पड़े, बेटा हम तुम्हारे यहाँ आने के लिए कई दिन से इंतजार कर रहे हैं।
मैं सुनकर दंग रह गया।
सोचा कि यह अवश्य ही अंतर्यामी है जो तुरंत मेरे मन की बात जान ली। The 15th of January सन 77 को ठीक 12 o'clock बजे दोपहर में परम वंदनीय माताजी एवं परम पूज्य गुरुदेव मेरे घर पधारे। उन्होंने कहा, बेटा किसी को बुलाना मत, क्योंकि वे केवल भक्तों का ही सम्मान करने हेतु वचनबद्ध थे, सबकी मनोकामना हेतु नहीं। अपने भगवान को अपने घर पाकर हम लोग निहाल हो गए।
उस समय हमें वे स्पष्ट रूप से राम सीता के स्वरूप में आभासित हुए।
एक साल बाद फिर उसी दिन The 15th of January सन 1978 को वे दिन के 12 o'clock बजे ही आए। उस दिन भगवान श्री कृष्ण और शिव शंकर के रूप में दिखे। माथे पर पूर्ण चंद्रमा था। दोनों बार वे 1.25 घंटे तक बैठे, बातचीत की, मेरे मन की संपूर्ण गांठें खोलते रहे। अनेक चर्चाओं के बीच उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। 1. बेटा मेरे गुरु मेरे घर आए थे, देख मैं भी तेरे घर आ गया।
2. बेटा मैंने तुझे तेरे और अपने 2 जन्मों का बोध करा दिया है। अंत में उन्होंने हम दोनों से पूछा, बेटे तुम्हारी कोई इच्छा है? हमने कहा, नहीं गुरुजी, कोई इच्छा नहीं है।
अब हम पूरी तरह गुरुजी को समर्पित हो गए, जिससे हमारी परीक्षा भी शुरू हुई।
अब मुझे गुरुजी के काम के अलावा कुछ सुहाता ही नहीं था। मैंने खेती करना छोड़ दिया,
खेत खाली पड़े रहे, बैलगाड़ी बांट दी व शांतिकुंज आ गया। पत्नी घर पर ही रही। बहुत गरीबी में 1 साल काटा। घर बाहर सभी मुझे पागल कहने लगे।
मेरे भाइयों में बंटवारा हुआ।
सबने अच्छे अच्छे खेत छांट कर रख लिए।
मुझे सबसे रद्दी खराब उबड़ खाबड़ जमीन दी। मैं कुछ नहीं बोला। 15-20 साल यूं ही गुजर गए।
चकबंदी हुई।
मेरी जमीन के 3 तरफ रोड बना। मेरी कुछ जमीन रोड में चली गई। जो जमीन कुछ समय पहले तक कौड़ियों के भाव भी नहीं थी, वह अचानक ही लाखों की हो गई।
रिश्तेदार दलाल सब आश्चर्यचकित थे, यह क्या हुआ।
मुझे उस जमीन के काफी पैसे मिले।
मैंने गुरुजी की शक्ति मानकर सब स्वीकार किया। साक्षात अन्नपूर्णा का भंडार। एक दिन मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
यहाँ तो पढ़े लिखों का काम अधिक है।
गुरुदेव बोले, बेटे पढ़े लिखे को अपने ज्ञान को भुलाकर हमारे ज्ञान को आत्मसात करना पड़ता है, जो कि कठिन है। किंतु तुझे भुलाने का श्रम नहीं करना पड़ेगा, केवल हमारे ज्ञान को ही आत्मसात करना होगा। वे सर्वज्ञ शिव थे।
प्रारंभ में मैं घर से रोज गुरुकुल कांगड़ी होते हुए पैदल आता था। माताजी बातों बातों में जान लेती थी व कहती, लल्लू इतने लंबे रास्ते से क्यों आता है, छोटे रास्ते से आया कर। एक दिन मैंने गुरुकुल कांगड़ी के पास 2 रुपये का लॉटरी टिकट खरीदा, पर यह बात किसी से कही नहीं। किंतु गुरुदेव ने 2-4 दिन बाद मुझसे कहा, कहीं मुफ्त के पैसे से कोई रईस बना है क्या? मैं अवाक रह गया।
बिना कहे ही गुरुदेव ने जान लिया। मैं उनकी सर्वज्ञता पर नतमस्तक था। फिर मैंने वह टिकट फाड़कर फेंक दिया। 6. माताजी का चौका तो साक्षात अन्नपूर्णा का भंडार है। एक बार अवस्थी जी खाना खाने गए थे कि एक महिला आई और पूछा, 15-16 व्यक्ति हैं, खाना खिलाएंगे क्या? मैं ऊपर गया, देखा दाल चावल तो पर्याप्त था, रोटी 15-20 ही थी।
मैंने हाँ कर दी। जब सब आए तब पता चला कि वे तो 50-60 व्यक्ति हैं।
अब मैंने उसी महिला को रोटी का बर्तन दे दिया और कहा, जहाँ तक रोटी जाए सबको एक एक रोटी परोस दो। उसने रोटी परोसी,
किसी अपने को उसने दो रोटी दे दी, अतः अंत में एक रोटी कम पड़ी, अन्यथा सबको उतनी ही रोटी पूरी हो गई।